हरे कृष्ण। अथ कर्म योगो नाम तृतीयोऽध्यायः। श्रीमद् भगवत गीता तीसरा अध्याय, श्लोक नंबर 1। कृपया इन पवित्र शब्दों को मेरे साथ साथ उच्चारण करने का प्रयास कीजिए। अर्जुन उवाच, ध्यायसि चेत् कर्मणस्ते मता बुद्धिर्जनार्दन, तत्किं कर्मणि घोरे मा नियोजयसि केशव। ध्यायसि चेत् कर्मणस्ते मता बुद्धिर्जनार्दन, तत्किं कर्मणि घोरे मा नियोजयसि केशव। ध्यायसि चेत् कर्मणस्ते मता बुद्धिर्जनार्दन, तत्किं कर्मणि घोरे मा नियोजयसि केशव। ध्यायसि चेत् कर्मणस्ते मता बुद्धिर्जनार्दन, तत्किं कर्मणि घोरे मा नियोजयसि केशव। ध्यायसि चेत् कर्मणस्ते मता बुद्धिर्जनार्दन, तत्किं कर्मणि घोरे मा नियोजयसि केशव। शब्दों का अर्थ देखिए। अर्जुन उवाच, अर्थात अर्जुन ने कहा ध्यायसि यानी श्रेष्ठ चेत, यदि कर्म यानी सत्काम कर्म की उपेक्षा, यदि आप समझते हो कि सत्काम कर्मों से ज्यादा ते तुम्हारे द्वारा, यानी अर्जुन भगवान को कह रहे हैं ते मता, मता का मतलब होता है माना जाता है। आप ये सोच रहे हो कि कर्मों से ज्यादा क्या श्रेष्ठ है, बुद्धि, जो बुद्धि होती है ना, बुद्धि योग में युक्त होकर कर्म करना सकाम कर्मों से ज्यादा श्रेष्ठ है। अगर आप ये समझते हो, बुद्धि योग तो भक्ति योग है ना, तो यदि आप समझते हो कि बुद्धि योग में युक्त होकर कार्य करना सकाम कर्मों से ज्यादा बेहतर है, तो फिर हे जनार्दन, जनार्दन का मतलब होता है हे कृष्ण, तत तत यानी अतः किम, फिर कर्मणि कर्म में घोरे यानी भयंकर हिंसात्मक जो कर्म है, यानी जो युद्ध का कर्म है उसमें क्यों के माना क्यों, तो फिर उसमें मुझे क्यों लगा रहे हो। माम यानी मुझको, नियोजसी यानी नियुक्त करते हो, केशव हे केशव। अनुवाद देखिए, अर्जुन ने कहा हे जनार्दन हे केशव, यदि आप बुद्धि को सत्काम काम से श्रेष्ठ मानते हैं तो फिर आप मुझे इस घोर युद्ध में क्यों लगाना चाहते हैं। इसके बाद 3.2 यानी तीसरे अध्याय का सेकंड श्लोक जो है वो इसी के साथ ही है, क्योंकि अर्जुन सवाल कर रहे हैं और ये इसी के साथ जुड़ा हुआ है, तो इसको भी हम इसी के साथ ही पढ़ने का प्रयास करेंगे। कृपया सहयोग दीजिए। अर्जुन कह रहे हैं व्यामिश्रेणेव वाक्येन बुद्धिं मोहयसीव मे, तदेकं वद निश्चित्य येन श्रेयोऽहम् आप्नुयाम्। व्यामिश्रेणेव वाक्येन बुद्धिं मोहयसीव मे, तदेकं वद निश्चित्य येन श्रेयोऽहम् आप्नुयाम्। व्यामिश्रेणेव वाक्येन हीना बुद्धिम मोहयसीवमे तदेकं वदनिश्चित्य येन श्रेयोऽहमाप्नुयाम् व्यामिश्रेणैव वाक्येन बुद्धिं मोहयसीव मे तदेकं वदनिश्चित्य येन श्रेयोऽहमाप्नुयाम् व्यामिश्रेणैव अर्थ देखिए शब्दों का, इसका मतलब होता है अनेक अर्थ मिश्रित होते ना, जैसे कभी ये आप बोलो कि कभी ये सही है, फिर बोल रहे कभी ये सही है, फिर ये कभी ये सही है, कभी बोल रहे हो कर्म योग में मिलकर कार्य करो, कभी आप बता रहे हो युद्ध करो, कभी बोल रहे हो कि है ना बुद्धि योग में युक्त होकर कार्य करो, तो कभी बोल रहे हो कि आत्मा जो है वो बिल्कुल उसको कुछ हो ही नहीं सकता तो अपना काम करो। पता नहीं कैसी कैसी बातें आपने मुझे बताई है, एकदम मिक्स करके मुझे बताई है, जो मिश्रित करके बताई है, एवं मानो वाक्य ना शब्दों से आपने जो ये दूसरा अध्याय इतना बड़ा बताया है ना, इसमें सारी चीजें मिक्स करके बताई है, तो इससे क्या हो गया बुद्धि मोहय सेवा में, बुद्धि जो है वो मोह हो गई है, मोह से गिर गई है, मेरी बुद्धि में इतना मोह उत्पन्न हो गया है कि मैं डिसीजन ही नहीं ले पा रहा हूँ, मुझे समझ में नहीं आ रहा कि आप क्या बोलना चाह रहे हो, इतना सारा ज्ञान दिया है, इतनी सारी बातें मिश्रित करके बता दी है, तो जिसकी वजह से मेरी बुद्धि ही मोहित हो गई है पूरी। और इव का मतलब होता है मानो मैं यानी मेरी तत् अतः एकम वद निश्चित्यम। अभी मेरी बात मानो, आप क्या करो कि जो कुछ अभी तुमने बताया ना इतना सारा, उसमें से कोई एक चीज निश्चित करके बताओ, बस एक सीधी सारी बात बता दो, ये इतना सारा मुझे समझ में नहीं आ रहा है, पता नहीं क्या क्या बताया, तदेकं वद निश्चितम्। आप निश्चित करके मुझे एक बात बताइए, ये न श्रेयो हम आपके नाम, ये न मनम जिससे श्रेय मतलब वास्तविक लाभ अहम यानी मैं आप नुयाम पा सकूं, यानी आप मुझे एक बात बताओ ना जिससे मैं सही तरह से लाभ पा सकूं, जो मेरे लिए ज्यादा बेहतर हो। अब बस मुझे, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बोला था शिष्यस्ते हम शादी माम, जिसमें अर्जुन ने बोला था ना 2.7 में, यह श्रीयतानिश्चितं रोहितं मे शिष्यस्ते हम शादी माम त्वं प्रपन्न, कि मैंने आपको पहले ही बोला कि मैं आपका शिष्य हूँ और मुझे सही तरह से सबको समझ में नहीं आ रहा है, तो एक ही बात या श्रेय ज्ञानिश्चितम जो मेरे लिए श्रेष्ठ है वो मुझे बताओ। और अभी आपने इतना मिक्स करके बताया तो मुझे सही तरह से समझ में नहीं आ रहा है, अभी वापस मैं बोल रहा हूँ तदेकम एकम ना एक ही बात बताओ, वद वो बात बताओ मुझे निश्चितम जो बिल्कुल निश्चित रूप से मेरा श्रेयो हम आपनो या मेरा हित मेरे जिससे मैं पा सकूं, जिससे मेरा श्रेय हो, वो मुझे एक बात बताओ, इतना सब नहीं बताओ। अनुवाद देखिए, अर्जुन कह रहे हैं आपकी व्यामिश्रित यानी अनेकार्थक उपदेश से मेरी बुद्धि मोह से मोहित हो गई है, अतः कृपा करके निश्चय पूर्वक मुझे बताइए कि इनमें से मेरे लिए सर्वाधिक श्रेष्ठ क्या होगा। तो अब यहाँ पर अर्जुन ने पहले बोला कि आप कभी बोलते हो काम कर्म करो, यानी कर्म योग बताते हो, फिर बोलते हो बुद्धि योग ज्यादा बेहतर है, और फिर अगर आप बुद्धि योग को कर्म योग से ज्यादा बेहतर समझते हो तो फिर मुझे क्यों बोल रहे हो कि आप युद्ध करो, मुझे एक बात निश्चित रूप से बताओ कि इनमें से सबसे ज्यादा मेरे लिए श्रेष्ठ कर क्या है, बस एक चीज बताओ। अभी युद्ध होने वाली है, तुम्हें सारी चीजें नहीं समझ में आ रही है, इस आध्यात्मिक ज्ञान को समझने की हमारे अंदर बिल्कुल भी योग्यता नहीं है, तो जब तक गुरु और गौरंग की कृपा नहीं होगी तब तक न समझ सकेंगे न ग्रहण कर सकेंगे, इसलिए गुरु और गौरंग से कृपा की याचना करते हुए मंगलाचरण करते हैं ताकि हम जो अध्ययन कर रहे हैं उसका पूरा पूरा लाभ प्राप्त हो सके, जो कि है कृष्ण प्रेम की प्राप्ति। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनाशलाकय चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः श्रीचैतन्यामनोभीष्टम् स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदामहयम् ददाति स्वपदान्तिकम् वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुतपदकमलम् श्रीगुरुन्वैष्णवांश श्रीरूपम् सागृजातम् सह गणरघुनाथन् वितं तं सजीवम् सात्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवम् श्रीराधा कृष्णपादं सहगणललिता श्रीविशाखान्विताश्च हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपति गोपीश गोपी का कांता श्री राधा कांत नमोस्तुते तप्त कांचनम गारंगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानु सुत देवी प्रणमामि हरि प्रिये वंश्याकल्पतरुभयस्य कृपासिन्धुभ्य एव च पतितनां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानन्द श्री अद्वैतं गदाधरं शिवासदि गौरभक्तवृन्द हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे श्रीमद् भगवद गीता माते की जय हो। आज हम तीसरा अध्याय शुरू करते हैं और शुरू में ही अर्जुन ने भगवान से प्रश्न पूछा है, क्योंकि इतने टाइम से भगवान बुद्धि योग के विषय में अर्जुन को बता रहे थे और अंतिम श्लोक 72 में भगवान ने बताया 2.72 में कि जो इस स्थिति को ऐसा ब्राह्मी स्थिति पार्थ नैनाम प्राप्य वी मुह्यति, यानी जब ऐसी स्थिति को प्राप्त हो जाता है बुद्धि योग में, जब वो स्थित प्रज्ञ हो जाता है तो स्थित वास्याम अंत कालोपी, तो ऐसी स्थिति प्राप्त होने के बाद कभी भी मोहित नहीं होता है और अगर ऐसी स्थिति को अंत काल के समय तक वो कंटिन्यू कर सकता है तो ब्रह्म निर्वाण मिच्छति, तो वो ब्रह्म यानी परम पद को प्राप्त होता है, भगवत धाम को प्राप्त हो जाता है। तो अर्जुन यहाँ पर पूछ रहे हैं कृष्ण से कि ये तो सबसे ज्यादा बेहतर है ना, बुद्धि योग में स्थित होकर कार्य करना और बुद्धि योग में स्थित होना यानी भगवान की प्रेम में भक्ति करना सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है, सबसे ज्यादा लाभदायक है, तो फिर तो बस छोड़ दो ना मैं सारे काम, युद्ध क्यों करूं फिर मैं, क्योंकि आप खुद कह रहे हो कि बुद्धि योग में स्थित होकर कार्य करना ज्यादा इम्पोर्टेंट है भगवान की भक्ति में, जिसमें अभी एंड में जो रिप्लाई किया ना स्थित प्रज्ञ का, वही अर्जुन देख रहा है कि उसने क्या कहा। भगवान श्री कृष्ण ने बोला ना, विहाय कामान्य सर्वान् पुमान् चरन्ति निस्पृहा निर्ममो निरहंकार सशांतिम् अधिगच्छति, कि जिसने अपनी इंद्रिय तृप्ति की समस्त इच्छाओं को त्याग कर दिया है, जो इच्छाओं के रहित रहता है, फिर वो युद्ध क्यों करेगा। और फिर पहले भगवान ने कहा ना कि यदा संहरति चायं कूर्म अंगानी व सर्वश इंद्रियाणि इंद्रियार्थेभ्यः तस्य प्रज्ञावतिष्ठा। जिस तरह कछुआ अपनी सारी इंद्रियों को अपने अंदर खोल के भीतर कर लेता है और मतलब कार्य नहीं करता है, जब उसको इंद्रिय तृप्ति के लिए कोई कार्य नहीं करता, उसी तरह से हमको भी अपनी इंद्रियों को वश में करना है। तो फिर यदि हम इंद्रियों को वश में ही करना है और इंद्रियां अगर विषयों में वर्तती रहेंगी तो फिर हमारे लिए पतन का कार्य बनेंगे। और आप स्वयं ही तो कह रहे हो कि इंद्रियों को रोकना है, आपको इंद्रियों की इच्छाओं को रोकना है। तो फिर चूंकि भगवान ने कहा ना तानि सर्वाणि संयम है युक्त आसित मत, सारी इंद्रियों को क्या करो, संयम कर लो और मेरे मुझ में युक्त हो जाओ। भगवान ने कहा जो इंद्रियों को पूर्णतः वश में करता है और इंद्रिय संयम करता है और अपनी चेतना को मुझ में स्थिर कर देता है वह मनुष्य स्थिर बुद्धि वाला। तो यहाँ से अर्जुन को क्या एक कारण मिल गया। अर्जुन वैसे भी युद्ध नहीं करना चाह रहा था, लेकिन अर्जुन ने भगवान ने जब बुद्धि योग का जो ये प्रचार किया ना अर्जुन के सामने, तो उसको एक कारण मिल गया कि अच्छा है। अभी तो भगवान ने खुद भी बोला ना कि ये सारी चीजों से बेहतर है कि भगवान के अपनी सारी इच्छाओं को त्याग दूं, सुख और दुख जितनी भी इच्छा है उन सबको त्याग दूं। और जिस तरह कछुआ अपनी इंद्रियों को समेटता है उसी तरह किसी भी चीज में ना सुख लो ना दुख किसी, अब कोई जीव कोई भी, जैसे भगवान ने 65 में क्या कहा, लता दे सर्व दुखानाम हानि रस्यो पर जायते प्रसन्न चेतसा यशु बुद्धि पर्यवतिष्ठते। यानी इस तरह का जो कृष्ण भावनामृत में संतुष्ट व्यक्ति के लिए संसार के तीनों पाप नष्ट हो जाते हैं और ऐसी तुष्ट चेतना होने पर उसकी बुद्धि शीघ्र ही स्थित हो जाती। तो भगवान जब बुद्धि योग को इतनी इम्पोर्टेंस दे रहे हैं तो अर्जुन सोच रहे हैं कि अगर इंद्रियों की प्रसन्नता के लिए कुछ करना ही नहीं है, कृष्ण भावना भावित होकर ही मेरा चित्त प्रसन्न होगा, तो फिर मैं युद्ध क्यों करूं आखिर। तो फिर यहाँ पर अर्जुन कृष्ण से यही कह रहे हैं कि अगर आप खुद भी कह रहे हो कि भक्ति करना ज्यादा इम्पोर्टेंट है तो फिर मुझे छोड़ो, मैं भी जाके भक्ति करता हूँ, मैं क्यों फिर युद्ध ये घोर। चलो ठीक है, एक साधारण कर्म जैसे हम लोग नियत कर्म होते हैं हमारे जो हम करते हैं साधारण वो कार्य एक अलग बात है, लेकिन यहाँ पर अर्जुन तो यहाँ तक कह रहे तत्किम कर्मणि घोरे मामी, जो भयानक इतना कर्म है मेरे सामने, भयंकर हिंसात्मक जो कर्म है, सबको मारने वाला, ये सब मैं नहीं करता हूँ ना, अभी मैं भगत बन जाता हूँ बस, करता ही नहीं हूँ। तो असल में क्या है, ये अर्जुन का जो प्रश्न है ना वो बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर अर्जुन इस प्रकार का प्रश्न नहीं करता ना तो फिर हम यही समझते कि हमको बस कुछ करना ही नहीं है। अभी हम क्या करते हैं, सब कुछ कार्य अपने छोड़ देते हैं और बस एक माला उठाते हैं, साइड में जाते हैं और मां मंत्र पढ़ना शुरू कर देते हैं, सारे काम छोड़ दो बस भगवान खुद ही करेगा, हमको कुछ नहीं करना है। वास्तव में हमारी बुद्धि बहुत मोटी है, इसलिए सही तरह से समझ में नहीं आता है। इसलिए अर्जुन का जो प्रश्न है ना वो हमें लाभ पहुंचाने के, शुक्र ये बहुत भगवान की कृपा है जो अर्जुन के जरिए ये प्रश्न पूछवा रहे हैं। अगर अर्जुन इस तरह के प्रश्न जो अर्जुन और भी आगे भी करेंगे इसी चैप्टर में, दूसरा भी बहुत बड़ा बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, अगर अर्जुन के ये प्रश्न नहीं होते ना तो गीता को समझना इम्पॉसिबल हो जाता, शबोपा जी बोलते हैं। तो पहले हम श्री प्रभुपाद जी के तात्पर्य से समझने का प्रयास करेंगे श्लोक को। तात्पर्य श्री प्रभुपाद द्वारा, शबोपाद की जय हो। श्री प्रभुपाद जी कहते हैं, श्री भगवान कृष्ण ने पिछले अध्याय में अपने घनिष्ठ मित्र अर्जुन को संसार के शोक सागर से उबारने के उद्देश्य से आत्मा के स्वरूप का विशद वर्णन किया है और आत्म साक्षात्कार के जिस मार्ग की संस्तुति की है वह है बुद्धि योग या कृष्ण भावना में कृष्ण भावनामृत। अब यहाँ पर श्री प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि पहले पिछले अध्याय में भगवान ने क्या बताया, सबसे पहले तो आपको आत्मा का ज्ञान दिया, यानी अर्जुन को बताया आत्मा के स्वरूप का बहुत ही डिटेल से वर्णन किया, आत्मा कैसा है, कहाँ रहता है, उसके क्या गुण है, कैसे नष्ट नहीं होता, वो सब बताया ना। तो आत्मा के विषय में विशद वर्णन माने डिटेल से बताया और फिर यही बताया कि आप आत्मा हो तो आत्म साक्षात्कार के मार्ग की जिस मार्ग की संस्तुति की है वह है बुद्धि योग। यानी कि अब आत्म साक्षात्कार के लिए आपको करना क्या है, भगवान की भक्ति करना है, कृष्ण भावनामृत मेरे का कार्य करना है। तो यहाँ पर श्री प्रभुपाद जी देखो कितनी इम्पोर्टेंट बात बता रहे, कभी कभी कृष्ण भावनामृत को भूल से जड़ता समझ लिया जाता है। जड़ता माने बस निष्क्रिय, कुछ करना वरना नहीं है, जड़ता। कृष्ण भावना अभी भगत बन गए ना, अभी आपको कोई कर्तव्य निभाने की जरूरत नहीं, बस एक जगह पे बैठ जाओ, उठाओ माला और शुरू हो जाओ, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, और कुछ करने की जरूरत नहीं, सब कुछ छोड़ दो। तो यहाँ पर श्री प्रभुपाद जी बोलते ऐसा थोड़ा भूल से ऐसा समझा जाता है, क्योंकि नया नया भक्त बना होता है तो उसको महामंत्र की इतनी वैल्यू बताते हैं, तो फिर उनको ऐसा लगता है कि बस इतने जो कि मेरे जीवन का लक्ष्य मुझे प्राप्त हो गया, अभी और कुछ करने की जरूरत नहीं है। लेकिन श्री प्रभुपाद जी बोलते ये तो भूल से समझा जाता है, और ऐसी भ्रांत धारणा वाला मनुष्य भगवान कृष्ण के नाम जप द्वारा पूर्णतया कृष्ण भावना भावित होने के लिए प्राय एकांत में चला जाता है। फिर क्या बोलता है, बस अभी मैं सारा टाइम माला करूंगा और कुछ नहीं करूंगा, किसी से बात भी नहीं करूंगा, एक कोने में बैठ जाऊंगा, कोई कार्य भी नहीं करूंगा और एकांत स्थान में चला जाऊंगा। किंतु यहाँ पर श्री प्रभुपाद जी आगे किंतु से सबको सावधान कर रहे हैं, ऐसा नहीं करना है आपको। कृष्ण भावना मृत दर्शन में प्रशिक्षित हुए बिना एकांत स्थान में कृष्ण नाम जप करना कठिन करना ठीक नहीं है, यानी कि ऐसा नहीं है, आपको ऐसे नहीं करना चाहिए। बस ऐसे ही बस आपको पता चल गया माला करनी है तो माला उठा के आप एकांत में जाओ, ऐसे नहीं। पहले आपको क्या करना है, कृष्ण भावनामृत दर्शन में प्रशिक्षित यानी गुरु महाराज से दीक्षा लेकर आपको उनसे शिक्षा ग्रहण करनी है, उसके बाद ही आप आगे प्रोसेस बढ़ाओगे। ऐसे नहीं डायरेक्ट से बस आप उठाओ और एकांत स्थान में चले जाओ। अब आगे है, इससे अबोध जनता से केवल सस्ती प्रशंसा प्राप्त हो सकती है, यानी कि जो बेवकूफ लोग हैं वो बोलेंगे हाँ देखो ये कितना अच्छा अभी भगत बन गया है, कोई काम वाम नहीं करता, सारा दिन बस माला करता रहता है। लेकिन यदि कोई इस तरह के अबोध लोग जो खुद भी है ना सही तरह से शास्त्र को नहीं समझ सकते, वो अगर आपकी प्रशंसा कर भी देते तो कोई बड़ी बात थोड़े। इसलिए श्री प्रभुपाद जी बोलते सिर्फ अबोध लोग जो कि खुद कुछ जिनको ज्ञान नहीं है वो आपकी प्रशंसा करेंगे। अर्जुन को भी कृष्ण भावनामृत या बुद्धि योग ऐसा लगा मानो वह सक्रिय जीवन से संन्यास लेकर एकांत स्थान में तपस्या का अभ्यास हो, यानी कि उसको ऐसा लगा भक्ति का मतलब होता है बस अपने सारे काम वाम छोड़ो, एकांत स्थान में जाओ, तपस्या करो, बस भगवान का नाम लो, ऐसा है, ऐसा उसको लगा। दूसरे शब्दों में वह कृष्ण भावनामृत को बहाना बनाकर चातुरी पूर्वक युद्ध से जी छुड़ाना चाहता है। अभी क्योंकि वो युद्ध वैसे ही करना नहीं चाह रहा था, उसको कोई ना कोई बहाना चाहिए था, तो अभी वो युद्ध छोड़ना चाहता है ये बहाना करके कि बस अभी मैं भगत बन रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ जंगल में, अभी मैं तपस्या वपस्या करूंगा, भगवान का नाम लूंगा और फिर युद्ध नहीं कर रहा हूँ। इस तरह से चातुर यानी चातुरी पूर्वक चालाकी करके युद्ध से जान छुड़ाना चाहता है। किंतु यहाँ पर वापस श्री प्रभुपाद ने कहा किंतु एकनिष्ठ शिष्य होने के नाते उसने यह बात अपने गुरु के समक्ष रखी और कृष्ण से सर्वोत्तम कार्य विधि के विषय में प्रश्न किया। लेकिन एक शिष्य जो होता है उसका कर्तव्य निभाते हुए कोई भी कार्य करने से पहले वो अपने गुरु महाराज से उसके बारे में पूछता है, तो अर्जुन ने अपने गुरु जो कि भगवान श्री कृष्ण का क्योंकि उन्होंने शिष्यत्व स्वीकार किया था उनसे पूछा कि आप बताओ ये जो मतलब गुरु के समक्ष अपनी बात रखी और उसे बताओ बोला बताओ मुझे सर्वोत्तम कार्य कौन सा है, किस तरह से मैं काम करूं। उत्तर में भगवान ने तृतीय अध्याय में कर्मयोग अर्थात कृष्ण भावनामृत की विस्तृत व्याख्या की है। कृष्ण भावनामृत कर्म किस तरह किया जाता है, कर्मयोग किसको कहते हैं, वो हमें तीसरे अध्याय में सुनने को मिलेगा। भगवान के मुखारविंद से अर्जुन की हमारे ऊपर कृपा है कि उसने अर्जुन ने इस तरह का प्रश्न किया। और दूसरा इसी के साथ ही बोला व्यामिश्रेण वाक्यन बुद्धि मोहयसी वे तदेकम वद निश्चित्यम ये न श्रेयो हम आपनुयाम, कि आपके व्यामिश्रित यानी अनेकार्थक उपदेश से मेरी बुद्धि मोहग्रस्त हो गई है, अतः कृपा करके निश्चित रूप से निश्चय पूर्वक मुझे बताइए कि इनमें से मेरे लिए सर्वाधिक श्रेष्ठ क्या होगा। श्रील प्रभुपाद की जय हो। श्री प्रभुपाद जी कहते हैं पिछले अध्याय में भगवद गीता के उपक्रम के रूप में सांख्य योग, बुद्धि योग, बुद्धि द्वारा इंद्रिय निग्रह, निष्काम कर्म योग तथा नवदीक्षित की स्थिति जैसे विभिन्न मार्गों का वर्णन किया गया, किंतु इसमें तारतम्य नहीं था। यानी कि अब उपक्रम के रूप में, यानी कि अब क्योंकि दूसरे अध्याय में भगवान श्री कृष्ण ने एक, क्योंकि सेकेंड चैप्टर में ना भगवान सब ऐसे बताना चाह रहे, संक्षिप्त में बताते ना सारी चीजें बताना चाहते हैं, तो जो कुछ भी भगवद गीता में आगे बताया, मैंने जैसे बताया ना आपको सांख्य योग, बुद्धि योग, बुद्धि द्वारा इंद्रिय निग्रह, सकाम कर्म, निष्काम कर्म और सब कुछ इसमें बताया, लेकिन इसमें कोई तारतम्य नहीं, मतलब वो बिल्कुल ऐसे सीरीज में नहीं बताया, कभी किसके बारे में भगवान बता रहे हैं, कभी किसके बारे में बता रहे, तो इस तरह से बेतरतीब तरीके से बताया। अब कर्म करने तथा समझने के लिए मार्ग की अधिक व्यवस्थित रूपरेखा की आवश्यकता होगी। अब क्योंकि खाली सुनना नहीं था बल्कि उस मार्ग पर चलना था, तो फिर अर्जुन को ये अच्छे तरीके से चाहिए था कि मुझे बताओ कि सही में, मुझे सही में बताओ, श्रेय ऐसे बोला ना, तदेकम वदनिश्चितम ये ना श्रेयो हम आभ्य, कि निश्चित रूप से बताओ कि इसमें सही तरह से मुझे करना क्या है। तो अतः अर्जुन इन भ्रामिक विषयों को स्पष्ट कर लेना चाहता था कि जो जो उलझन जिसकी वजह से मुझे हो रही ना बहुत ज्यादा, मैं भ्रमित हो रहा हूँ, मैं मोहग्रस्त हो गया और भी अभी मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, भक्ति करूँ या कर्म करूँ या क्या करूँ, युद्ध करूँ या फिर छोड़ दूँ, ये सब मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। तो आप है ना, अर्जुन क्या करना चाहता था, इन सबको स्पष्ट करना चाहता था जिससे सामान्य मनुष्य बिना किसी भ्रम के उन्हें स्वीकार कर सके। यहाँ कृष्ण प्रभुपाद जी सही बात बता रहे हैं कि वाकई में हम जैसे सामान्य, अर्जुन को ये चीज भगवान से वो समझ रहे थे और अर्जुन कोई साधारण व्यक्ति भी नहीं थे, भगवान के मित्र थे अर्जुन समझ रहे थे, लेकिन फिर भी सामान्य जन के कल्याण के लिए, क्योंकि हम जैसे बेवकूफ क्या करते, वरना सारे कार्य छोड़ देते, अपने सारे नियत कर्म छोड़ देते और क्या करते, बस महामंत्र जप करो और बस एक कोने में बैठ जाओ, सबसे अपना नाता तोड़ दो और ये कर दे, करना मिल जाते। तो इसलिए यहाँ पर शपोपाल जी बोलते हैं जिससे सामान्य मनुष्य बिना किसी भ्रम के उन्हें स्वीकार कर सके। यद्यपि श्री कृष्ण वाक् चतुराई से अर्जुन को चक्कराना नहीं चाहते थे, ऐसा नहीं था कि भगवान श्री कृष्ण ऐसे चाहते थे कि हाँ मैं ऐसी बातें बताऊंगा चिकनी झुबड़ी अर्जुन को चकरा दूंगा, ऐसे सोचा नहीं था, भगवान ने तो सही अपने हिसाब से बताया था, किंतु अर्जुन ये नहीं समझ सके कि कृष्ण भावना में है क्या, अर्जुन को समझ में नहीं आ रहा था कि ये बुद्धि योग या भक्ति योग है क्या, क्या ये जड़ता है या सक्रिय है, यानी कि इसमें मुझे काम करना है, युद्ध करना है या कुछ नहीं करना है, यानी कि सक्रिय है, कार्य करने का है या नहीं करने का है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि ये जड़ता है या सक्रिय सेवा। दूसरे शब्दों में अपने प्रश्नों से वह उन समस्त शिष्यों के लिए जो श्रीमद् भगवद गीता के रहस्य को समझना चाहते हैं कृष्ण भावनामृत का मार्ग प्रशस्त करना चाहता था, कि वो सारे व्यक्ति, वो सारे शिष्य जो कि श्रीमद् भगवद गीता को समझना चाहते हैं और श्रीमद् भगवद गीता के उपदेशों को अपने जीवन में ग्रहण करना चाहते हैं, उनके लिए एक मार्ग बनाना चाह रहा था कि उनको सही तरह से समझ, जो वाकई में सीरियस हैं, जो वाकई में संजीदा हैं, जो वाकई में सिंसियरली श्रीमद् भगवद गीता के उपदेशों को ग्रहण करना चाहते हैं, उनके लिए एक सही वे भगवान को बोल रहे थे कि मुझे बताओ, क्योंकि अभी जो बताया वो ऐसे सीरीज में नहीं बताया, तारतम्य नहीं उसके अंदर, बेतरतीबी से बताया है, तो इसको थोड़ा सही करके बताओ ताकि ना हम आसानी से उसको ग्रहण कर सकें। तो इससे पहले हमने दूसरा चैप्टर पढ़ा जिसमें 72 श्लोक थे, अगर वन श्लोक डेली पढ़ा है तो 2 महीने से ज्यादा हो गए उसमें, और क्या क्या पढ़ा जिसके लिए अर्जुन को ये प्रश्न करना पड़ा, तो उसके बारे में हमें पता होना चाहिए कि क्या आखिर ऐसा, क्योंकि हमने तो श्री प्रभुपाद जी की पटपट के साथ पढ़ा तो हमें ऐसा लगा ही नहीं कि इसमें कुछ भगवान ने मिश्रित करके बताया है, लेकिन अब क्योंकि तब जब अर्जुन डायरेक्ट से भगवान के श्लोक सुन रहे थे तो थोड़ा हमारे ऊपर भगवान श्री प्रभुपाद जी की असीम कृपा है कि श्रीमद् भगवद गीता का एक एक भी अगर श्लोक पढ़ते हैं तो वही सर्वधर्मान परित्यज्य एंड उसके अंदर श्री प्रभुपाद ने डाल दिया कि आपको क्या करना, भगवान श्री कृष्ण की शरण ग्रहण करना। लेकिन यहाँ पर फिर भी अर्जुन का जो प्रश्न है वो बहुत ज्यादा उपयोगी है कि कृष्ण भावनामृत यदि ग्रहण करना है तो वो सक्रिय सेवा है या निष्क्रिय है। तो हमने क्या पढ़ा है, अगर थोड़ा सा मैं आपको संक्षिप्त में बताऊं तो सेकेंड चैप्टर के स्टार्ट में 11 तक तो अर्जुन और कृष्ण के विषय में बातें थी और के अर्जुन की कायरता के विषय में बातें कर रहे थे कृष्ण, और दूसरे 2.11 के बाद 2.38 तक युद्ध करने के विषय में युक्तियां कि युद्ध करना है आपको, उसके बाद 39 से लेकर 48 तक कर्म करने के पक्ष में युक्तियां थी कि कर्म करना चाहिए आपको, और 49 से ना तो युद्ध करने का समर्थन मिलता है और ना ही कर्म करने का समर्थन मिलता है। तो अर्जुन ने विचार किया कि भगवान ने जो युद्ध करने का उपदेश दिया है उससे तो अच्छा ये कि सामान्य कर्म करना, और सामान्य कर्म से भी क्या अच्छा है कि समाधि में स्थित हो जाना, जो दूसरे अध्याय का अंतिम उपदेश है। अंतिम उपदेश क्या है? ऐशा ब्राह्मी स्थिति पार्थ, कि बस ऐसी स्थिति में आप आ जाओ और नैनम पार्थवी में हुई थी, तब आपको कोई मोह होगा नहीं, और इसे स्वास्यामंत काले भी ब्रह्म निर्वाण निच्छति, तो अगर ऐसी स्थिति को आप अंतकाल में रखोगे तो आप ब्रह्म निर्वाण पद को प्राप्त होगे। तो अंतिम उद्देश्य, तो इस श्लोक में अर्जुन पूछ रहे हैं कि आपके मत में यदि समाधि में स्थित होना ज्यादा अधिक श्रेष्ठ कर है तो मुझे युद्ध जैसे घोर कर्म में क्यों लगा रहे हैं। वैसे भगवान क्या बताना चाह रहे थे कि युद्ध हो या कर्म हो या समाधि, यदि वो कृष्ण भावनामृत है तो इन तीनों में कोई अंतर नहीं है। भगवान ने सीधा बताया, बट अर्जुन ने बोला कि ये तो आपने बहुत मिलाकर बताया है, नहीं समझ में आया मुझे, आप इसको थोड़ा डिटेल से बता। और प्रथम श्लोक में अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण को दो नामों से संबंधित किया, संबोधित किया है, क्या? ज्ञायसी चेत कर्मणस्ते मदा बुद्धिर् जनार्दन। जब ऐसे भगवान के पवित्र नाम आते हैं तो उनकी व्याख्या जरूर सुननी चाहिए कि आखिर भगवान को इन नाम से पुकारा गया है तो भगवान का ये नाम कैसे इस श्लोक से रिलेटेड कैसे है, क्योंकि अर्जुन बुद्धिमान थे तो रिलेटेड नाम भगवान के ले रहे हैं। पहला है जनार्दन। जनार्दन का मतलब होता है जो असुरों को पीड़ा पहुंचाता है, जो आम लोग हैं उनको कष्ट देने वाले जो असुर होते हैं उनको दुखी करता है। जैसे भगवान श्री कृष्ण ने हिरण्यकश्यप को, जो कि उनके भक्त प्रहलाद को बहुत कष्ट देते थे, उनको कष्ट दिया, इतना उनको मारते वक्त भगवान ने उनको बहुत ही पीड़ा पहुंचाई। उसको हम देखते हैं, अगर कभी फोटो आप देखो जब मार रहे होते हैं तो उनके पेट में से सब निकाल रहे होते, खील रहे, भगवान उसको उसमें आनंदित ले रहे थे, आनंदित हो रहे थे, उसको तकलीफ पहुंचाकर भगवान उसको बहुत कष्ट दे रहे थे। तो जो भगवान की भक्ति, भक्तों को जो तंग करता है ना, भक्तों को जो कष्ट देता है, भगवान उसको बहुत तड़पाते हैं, उसको डायरेक्ट से मारते नहीं है, उसको बहुत तड़पाते हैं। दूसरा जनार्दन का मतलब ये भी होता है कि जो असुरों का वध करते हैं किसी भी तरीके से, असुर माने असुर हैं तो उनका वध ही करेंगे, उसके से जैसे मधु और केतक दो राक्षस थे, उनको ये वरदान मिला था कि जब तक आप किसी को अपनी मृत्यु का उपाय नहीं बताओगे तब तक वो आपको नहीं मारेगा। तो फिर अब भगवान श्री कृष्ण से वो एक दफा भगवान श्री कृष्ण को बोला आप हमसे वरदान मांगो, तो भगवान ने बोला यदि आप मुझे वरदान देना चाहते हो तो ये वरदान दो, मुझे बताओ कि आप मरोगे कैसे। तो भगवान ने कैसे भी करके राक्षसों को किसी न किसी, जैसे शूर्पणखा अभी रावण को मारना था, उनके सारे जितने भी असुर थे उनको मारना था, भगवान आए थे तो शूर्पणखा को रास्ता बनाकर, किसी तरह से भगवान की लीला बनाकर शूर्पणखा को भेजा और सबकी उसकी वजह से सारे राक्षसों को मारा। तो और दूसरा ये कि जो जनार्दन होते हैं वो कभी भी, चाहे असुर लोग कितनी भी कोशिश कर लें, कितनी कोशिश कर लें, यदि इसके अंदर प्रेम नहीं है ना उनके लिए, उनके साथ कभी भी वो संबंध नहीं जोड़ते। जैसे दुर्योधन ने बहुत कोशिश की थी कि जितना प्यार अर्जुन से कृष्ण करते हैं उतना उससे करें, तो जब शांति प्रस्ताव लेकर भगवान आ रहे थे हस्तिनापुर में तो दुर्योधन ने जगह जगह पर भगवान के आने के लिए बहुत ही ज्यादा आयोजन किया था, सामग्रियां बहुत, भगवान के रास्ते बहुत अच्छे बना दिए थे, हर जगह जगह पर टेंट लगवाए थे और भगवान के लिए ना स्वागत की तैयारियां की थी, लेकिन है ना कृष्ण वो रास्ते से गए ही नहीं, कृष्ण ने बोला ऐसे लोग का तो मुझे स्वागत चाहिए ही नहीं, तो जंगल के रास्ते से गए। और जब वहां पर हस्तिनापुर में पहुंचे तो सबको पता था आज कृष्ण आए हैं, तो अब जिसके महल में जाएंगे तो उसी के घर में खाना खाएंगे ना। तो दुर्योधन ने भगवान के लिए 56 भोजन बनवाए, लेकिन दुर्योधन को भगवान ने कहा दुर्योधन कोई किसी के घर में भोजन तभी खाता है जब या तो वो भूखा हो या फिर उससे स्नेह करता है, और ये दोनों बातें हमारे बीच में नहीं है। ना तो मैं भूखा हूं और ना ही तुम या मैं आपस में प्रेम करते हैं। भोजन तो मैं विदुर जी के घर पर करूंगा, यानी कि भगवान उनकी कोई संधि प्रस्ताव को स्वीकार ही नहीं करते, क्योंकि भगवान चाहते ही नहीं। भगवान सिर्फ प्रेम कहते हैं, साच कहो सुन लो सभी जिन प्रेम कियो तिन्हीं ही प्रभु पायो। तो जहाँ पर प्रेम नहीं है भगवान उनके साथ कभी भी, भगवान जनार्दन उनके साथ कभी भी संबंध नहीं जोड़ते हैं। और दूसरा जनार्दन का मतलब होता है भक्तों के पीछे बेचैनी से चलने वाले, यानी कि वो अपनी स्थिति को नहीं देखते हैं कि मैं कितना महान हूँ, मैं त्रिलोकी का नाथ हूँ। कोई भी भक्त, भक्त चाहे जीव कोई भी प्राणी हो, जैसे गजेंद्र, जब गजेंद्र जो कि हाथी था उसको जब रक्षा की आवश्यकता पड़ी, उसने जब भगवान को पुकारा तो वो भगवान जो त्रिलोकी के नाथ हैं वो स्वयं बगैर गरुड़ के दौड़ दौड़ के आ गए और गजेंद्र की रक्षा करने के लिए। वो स्वयं भगवान जो है वो अपने भक्तों के कष्ट को नहीं देख सकते, मतलब जो अपने भक्तों के कष्ट में उनकी पुकार को सुने और किसी भी उपकृति से किसी भी उपति से वो उसको दूर करने का पूरा पूरा प्रयास करे, बल्कि प्रयास वो जनार्दन वो जो दूर कर दे अपने भक्त की हर एक तकलीफ को। तो अर्जुन बोलना चाहते थे कि क्योंकि आप अपने भक्तों के कष्टों के विषय में सुनते हो और उनको दूर कर देते हो, तो फिर अब मेरी बारी है, मैं कष्ट में हूँ और मुझे भी आपको, आप क्योंकि जनार्दन हो तो मेरे कष्ट को दूर करो, मुझे भी ये असुर लोग जो ये दुर्योधन लोग हैं बहुत पीड़ा दे रहे हैं, तो आप उनके साथ कुछ करो। आप क्योंकि जनार्दन हो, असुरों का वध करते हो, असुरों को पीड़ा पहुंचाते हो और है ना जो भक्तों को कष्ट पहुंचाते हैं उनको नहीं छोड़ते हो, तो आप, मैं तो तुम्हारा भक्त हूँ ना, तो तुम अपने इस नाम को सार्थक करो, उनको कुछ करो, उनके साथ कुछ करो, मुझे छोड़ो, मैं ये सब नहीं करना चाहता हूँ। और दूसरा, भगवान श्री कृष्ण को अर्जुन ने नाम दिया है केशव। बहुत बहुत सुंदर अर्थ है इस केशव शब्द के। जैसे सबसे पहले तो पहला अर्थ है कि साल में 12 महीने होते हैं, उनमें से हर एक महीने को भगवान के किसी विशिष्ट नाम से पुकारा जाता है। जिस दिन महाभारत का युद्ध प्रारंभ हुआ था, यानी जिस दिन स्टार्ट हुआ था ना, भगवद गीता भी बताई थी, उस दिन अग्रहायण महीने की शुक्ल पक्ष की एकादशी थी। अग्रहायण महीने को केशव मास से बोला जाता है। तो अर्जुन का भाव था कि आपके इस पवित्र नाम से जुड़ा हुआ ये महीना है, इतना सुंदर मास है, और इस मास में मुझे इतने ज्यादा अपराध करने पड़ेंगे घोरम, फिर मैं क्यों इतने अपराध करूं इस आपके नाम वाले महीने में, मैं नहीं करना चाहता हूँ ये सब, मैं नहीं करना चाहता, मुझसे मत करवाओ। केशव का दूसरा अर्थ है केश वक्र, यानी करली, जिसके करली बाल हो ना, केश जिसके वक्र वाले हो, वक्र बना करली बाल हो, यानी अर्जुन यहाँ भगवान को कहना चाह रहे हैं जिस प्रकार आपके बाल टेढ़े ना करली हैं, अब बात भी टेढ़ी करते हो, कभी क्या बोलते हो कभी क्या बोल रहे हो, मुझे नहीं समझ में आ रही है, आपने पता नहीं ज्यायसी चेत कर्मणस्य मता बुद्धि जनार्दन, कभी बोलते हो कर्म योग श्रेष्ठ है, कभी बोलते हो बुद्धि योग श्रेष्ठ है, फिर अगर बुद्धि योग ज्यादा श्रेष्ठ है तो फिर मैं कार्य, ये घोर कार्य क्यों करूं, मैं युद्ध क्यों करूं। तो इसलिए आपका नाम केशव है, आप करली करली बातें करते हो, टेढ़ी टेढ़ी बातें करते हो, नहीं समझ में आती है मुझे। और इसके अतिरिक्त केशव का मतलब, अब देखो केशव में तीन शब्द है, क श और व। क जो जहां पर भी आता है ना, क का मतलब होता है ब्रह्मा और श का मतलब होता है शिव और व का मतलब होता है वपु, वपु माने शरीर। यानी केशव का मतलब वो हुआ कि वह पुरुष जिसके शरीर में ब्रह्मा और शिव का निवास हो। यानी अगर कृष्ण की पूजा की जाती है तो ब्रह्मा तथा शिव की पूजा अपने आप हो जाती है। तो यहाँ पर अर्जुन कहना चाह रहे थे क्योंकि ब्रह्मा और शिव जी भी आपके साथ ही आपके शरीर में ही हैं, तो फिर मुझे आपकी भक्ति करने दो और कुछ भी छोड़ दो, बाकी सारे मैं समझता हूँ कि बस आपकी भक्ति करूंगा, अपने सारे कार्य अगर छोड़ भी दूंगा तो भी मुझे अपराध वपराध कुछ लगने वाला नहीं है क्योंकि वही सिद्धि है, तो मैं ये नहीं करना चाहता हूँ। केशव कहकर जान छुड़ा रहे हैं अर्जुन अपने युद्ध कर्म से। अब यहाँ पर एक बहुत ही सुंदर अर्थ है केशव का, जो कि सिर्फ और सिर्फ कृष्ण से ही रिलेटेड, यानी उसको उसका यदि आप मतलब सुनोगे ना तो आपको पता चलेगा कि कृष्ण के अतिरिक्त और कोई भगवान का कोई अवतार भी नहीं कर सकता। अब केशव यानी एक ऐसा व्यक्ति जो अपनी प्रिया की केश संवारे, तो हम देखते हैं भगवान की कृष्ण लीला में हमें पता है कि श्रीमती राधा रानी के केश संवारते थे, उन पर फूल लगाते थे, उनको सेट करते थे। तो अर्जुन कृष्ण को कह रहा है, कृष्ण कितनी आश्चर्य की बात है, आप केशव हो, आप तो इतनी इतनी मधुर प्रेममय लीलाएं करने वाले हो, इतना आपकी लीलाएं इतनी मधुर होती हैं, इतनी रोमांटिक लीलाएं होती हैं, तो फिर आप ये फिर इतना भयानक कर्म जो युद्ध वाला वो मुझसे क्यों करवा रहे हो? हम चलते हैं कोई दूसरी प्रेम लीला करते हैं, ये युद्ध की लीला अभी नहीं करना चाहता हूँ मैं। तो अर्जुन ने भगवान से यहाँ पर दो प्रश्न किए हैं, मतलब एक ही प्रश्न किया है, उसको दो हिस्सों में डिवाइड किया। पहले कहा, हे जनार्दन, हे केशव, यदि आप बुद्धि को सकाम कर्म से श्रेष्ठ समझते हो तो फिर आप मुझे इस घोर युद्ध में क्यों लगाना चाहते हो? आपके इस व्यामिश्रित उपदेशों से मेरी बुद्धि मोहित हो गई, अतः कृपा करके निश्चय पूर्वक मुझे बताइए कि इनमें से मेरे लिए सर्वाधिक श्रेष्ठ क्या होगा। वास्तव में भक्तों, ये जो प्रश्न है ना, वो पूरा का पूरा सेकंड चैप्टर की वजह से क्रिएट हुआ है। यदि सेकंड चैप्टर में हमने क्या पढ़ा है ये हमें पता होगा तो ही हम समझ सकेंगे कि अर्जुन क्या पूछना चाहता है। तो मेरी हृदय से इच्छा है कि इससे रिलेटेड एक सेकंड चैप्टर की समरी के हिसाब से हम बात करेंगे, ताकि हमें पता चले कि क्या क्या भगवान ने कहाँ कहाँ कहा, जिसकी वजह से अर्जुन को ये कहना पड़ा कि आपकी ये जो मिक्स बातें मिश्रित बातें हैं उसकी वजह से मुझे मोह हो गया है। तो इसके साथ रिलेटेड मैं एक दूसरा भी लेक्चर सेंड कर रही हूँ, कृपा करके उसको सुनिए ताकि आपको पता चले कि कहाँ कहाँ भगवान ने अर्जुन को उलझाया है, या कौन कौन की वजह से, कौन कौन सी बातों की वजह से, कौन कौन से श्लोकों की वजह से अर्जुन की मति भ्रमित हो गई है। धन्यवाद। इसके साथ एक दूसरा भी लेक्चर आएगा, वो जरूर आप सबको सुनना है।